सभी को भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्मरण से इस विशेष भक्ति सत्संग का आरंभ करेंगे। कोदंडधारी साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी इस भक्ति सत्संग के माध्यम से हम सभी को दर्शन देने हेतु अवतरित हुए हैं। हम सभी उनके अत्यंत भक्तिपूर्ण दर्शन करेंगे। श्री राम प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना रूपी भक्ति पुष्पों से पूजा अर्चना करेंगे। हे श्री रघुनंदन, हम आपके परम पवित्र सुकोमल श्री चरण कमलों में संपूर्ण रूप से शरणागत हैं। हे श्री राम, आप हमें आपके परम दिव्य श्री चरणों में शरण दीजिए। हमें आपके परम चरणों की अपार भक्ति करना संभव हो। हे भगवान, आप हमें यही वरदान दीजिए। हे भगवान, हे रघुनायक, आप हमें यही वरदान दीजिए। आपके श्री चरणों के बिना हमारे मन में अन्य कोई भी इच्छा न रहे भगवान। हे रघुनायक, हे राघव, हमारी सभी इच्छाएं आकांक्षाएं आपके दिव्य श्री चरणों में ही समा जाए। हे प्रभु, आपकी श्री चरण प्राप्ति की इच्छा ही हमारा परम ध्येय बने और इसी ध्येय प्राप्ति के लिए ही हमारा प्रत्येक क्षण और हमारी प्रत्येक सांस समर्पित हो। हे श्री राम, आप हमें चरणाश्रय दे, क्योंकि आपके बिना हमारा दूजा आधार कौन है। हे रघुनाथ, हे रघुनंदन, हे सीतापति, हमें चरणाश्रय दीजिए। हे रघुनंदन, चरणाश्रय दीजिए। यही आपके कोमल श्री चरणों में हमारी भक्तिपूर्ण याचना है। हे प्रभु, इस याचना को स्वीकार कीजिए। प्रभु, स्वीकार कीजिए। जो प्रभु श्री रामचंद्र साक्षात नारायण स्वरूप है, वे प्रभु ही संपूर्ण विश्व के आधार है और वे प्रभु ही हमारे सर्वस्व है। हमारे माता पिता स्वामी अर्थात सब कुछ वे ही है। उनके बिना हमें और कुछ ज्ञात नहीं। इसी भाव से हम सभी सर्वस्वरूप और परम दयालु श्री राम प्रभु के श्री चरणों में, उन रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में श्लोक रूपी भक्ति पुष्पों से भक्ति अर्चना करेंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज के इस राममय सत्संग का आरंभ करते समय हम राम भक्ति के दिव्य भक्ति विश्व का अनुभव करेंगे। तन मन प्राण और चित्त सहित हम संपूर्ण रूप से राममय हो जाएंगे। श्री राम प्रभु के दिव्य एवं अमृतमय नाम संकीर्तन से हम प्रभुमय हो जाएंगे, श्री राममय हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साक्षात श्री राम प्रभु के इस दिव्य नाम संकीर्तन से ऐसा लग रहा है कि सचमुच ही हम श्री राममय हो गए हैं। हमारी संपूर्ण काया हमारा रोमो रोम प्रभु श्री राममय हो गया है। हम संपूर्ण रूप से श्री राम प्रभु के ही हो गए हैं। श्री राम प्रभु का संकीर्तन करना श्री राम भक्तों के लिए अत्यानंद की और अत्यंत प्राणप्रिय बात होती है। उसमें भी जो प्रभु के परम भक्त हैं उनकी भक्तिमय स्थिति के विषय में हम क्या बताएं। इस भक्ति सत्संग के माध्यम से हम समस्त विश्व के सभी श्री राम भक्त जीव श्री राम नाम का जयघोष कर रहे हैं और इस कारण श्री राम की भक्ति करने हेतु हमारे साथ उच्च लोक के देवी देवता ऋषि मुनि और पुण्यात्माएं भी भावमय अंतकरण से उपस्थित है। हम सभी अपने अंतक चक्षुओं से इसकी दिव्य अनुभूति करेंगे। क्या आपको भावस्थिति में स्थित इन सभी देवताओं ऋषि मुनियों और पुण्यात्मों के दर्शन हो रहे हैं? आप सभी इसकी अनुभूति लीजिए। साक्षात विष्णु अवतार श्री राम की भक्ति करने के लिए यहाँ और कौन उपस्थित हैं? और सुखद संवेदना प्रदान करने वाली भक्तिमय झंकार कहाँ से सुनाई दे रही है क्या? निश्चित हम सभी को भगवान ने अंदर से उत्तर दिया ही होगा। यहाँ श्री राम भक्त साक्षात हनुमान जी भी उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम के परम भक्त और सप्त चिरंजीवों में से एक भक्त शिरोमणि हनुमान जी के हृदय से ही वह भक्तिमय झंकार हमें सुनाई दे रहा है। स्वयं श्री राम भी प्रतिक्षण जिनका स्मरण करते हैं उस हनुमान जी की उपस्थिति के बिना कोई भी राम कथा राम स्तुति राम संकीर्तन अथवा राम भजन पूर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी समान राम भक्ति इस भूतल पर तो क्या अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में भी कोई नहीं कर सकता है। आज इस कलयुग में भी जहाँ जहाँ श्री राम की स्तुति होती है और प्रभु नाम का संकीर्तन होता है वहाँ निश्चित रूप से हनुमान जी उपस्थित होते हैं। जिन्होंने अपनी छाती का विग्रह कर अपने हृदय में स्थित सीताराम के सभी को दर्शन कराए ऐसे हनुमान जी की परम भक्ति आज हम प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। श्री विष्णु जी ने जब इस पृथ्वी तल पर दिव्य अवतार धारण किया उनके दिव्य सान्निध्य का अनुभव करने हेतु उनकी भक्ति करने हेतु और राम कार्य में सहयोग देने हेतु केवल 5 दिनों में ही भगवान शंकर ने हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। कितनी अद्भुत है ये राम भक्ति, सच में कितनी अद्भुत है। इस भक्ति सत्संग के माध्यम से उसकी हम दिव्य अनुभूति लेंगे। जिसके तन मन व रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं, जिनका आचरण ही राममय है, राम भक्ति ही जिनका मूल मंत्र है और राम सेवा ही निधि ध्यास है, वे है श्री हनुमान। जो हम सभी की भावमय प्रार्थना को अपनी भक्ति का स्पर्श देकर उसे श्री राम के चरणों तक पहुंचाते हैं वे है केवल और केवल हनुमान जी। श्री राम को प्रसन्न करने से पूर्व जिन्हें प्रसन्न करना पड़ता है वे है महाबली हनुमान जी। हम सभी हनुमान जी की परम भक्ति सीखेंगे। प्रत्यक्ष श्री राम प्रभु ने अवतार धारण कर पृथ्वी तल पर रहने वाले हम सभी जीवों को पावन बना दिया है। अब साक्षात प्रभु के परम भक्त हनुमान जी का अवतार धारण समारोह कैसा था उसकी दिव्य अनुभूति करते हैं। पुंजिक स्थला नाम के एक अप्सरा थी। ऋषि के शाप के कारण उसे वानर जन्म प्राप्त हुआ था। भारत की दक्षिण दिशा में स्थित कुंजर नाम के एक वानर राजा उसके पिता थे। कन्या रत्न प्राप्त होने पर राजा कुंजर ने बड़े हर्ष से उसका नाम अंजनी रखा। अंजनी भले ही वानर जाति में जन्मी हो परंतु उसका रूप बहुत अलग था। उसकी देह में दैवीय शक्ति थी। कुंजर को अपनी इस कन्या की अपूर्व शक्ति ज्ञात थी। धीरे धीरे अंजनी बड़ी हुई। राजा कुंजर उसके लिए अनुरूप वर की खोज करने लगे। सुमेरु पर्वत पर केसरी नाम के एक वानर राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। वृत्ति से वे श्रद्धालु एवं भक्तिपरायण थे। कुंजर ने अंजनी का विवाह वानरराज केसरी से करा दिया और उसके उपरांत अंजनी वानरराज केसरी के साथ आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगी। विवाह संपन्न होकर लंबा समय बीत गया परंतु ये दंपत्ति संतान सुख से वंचित थी। तब अपने मन की ये व्यथा लेकर अंजनी मतंग ऋषि के पास गई। मतंग ऋषि ने उसे बताया, हे पुत्री, तुम 12 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करो, इसके साथ उपवास भी करो, उससे तुम्हें इच्छित फल प्राप्त होगा। मतंग ऋषि की आज्ञा के अनुसार अंजनी तपस्या करने लगी। अपनी भूख प्यास भूलकर वो अत्यंत तन्मयता के साथ तपस्यारत थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उसे ये वरदान दिया, तुम्हारे गर्भ से मैं ही पुत्र रूप में जन्म लूंगा। भगवान शिव जी के इस वरदान से अंजनी को अपार आनंद हुआ। भगवान शिव जी के वचनों पर संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए उसने अपनी तपस्या जारी रखी। दूसरी ओर रघुकुल के राजा दशरथ के पास तीनों लोकों का सुख और ऐश्वर्य था, परंतु तब भी संतान सुख से वंचित होने के कारण राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां दुखी थी। गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग ऋषि और साथ ही अनेक पुण्यशील ऋषि मुनियों को भी आमंत्रित किया। इन महान तपस्वियों की उपस्थिति में यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंग ऋषि और अन्य पुण्यशील मुनिजन अपनी ओजस्वी वाणी में मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके उस पवित्र वाणी के मंत्रोच्चारण से संपूर्ण अंतरिक्ष गूंज उठा। यज्ञ कुंड में श्रद्धा पूर्वक आहुतियां दी जाने लगी। उनकी उस यज्ञ सेवा से प्रसन्न होकर यज्ञ कुंड से दमकते स्वर्ण की भांति दैदीप्यमान यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को दिव्य पायस अर्थात खीर से युक्त स्वर्ण पात्र प्रदान किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के कारण राजा दशरथ को दिव्य पायस प्राप्त हुआ। राजा दशरथ ने उस दिव्य पायस को लेकर उसे तीन भागों में बांटा। उसी समय आकाश में उड़ रही एक चील ने उस पायस को झपट लिया और पायस का थोड़ा सा अंश लेकर वह आकाश में उड़ गई। चील के मुख में स्थित पायस का अंश एक वन में पुत्र प्राप्ति के लिए तप करती हुई अंजनी के हाथ में पड़ गया। ये पायस रूपी प्रसाद प्राप्त होते ही अंजनी को लगा ये तो साक्षात भगवान शिव जी का ही प्रसाद है और इसलिए उसने अत्यंत आनंद और कृतज्ञता के साथ उसका सेवन किया। ये तो सब भगवान शिव और पवन देव की लीला थी। उस पायस के सेवन से अंजनी को पुत्र रूप में हनुमान जी प्राप्त हुए। प्रभु श्री राम जी के अवतार धारण हेतु यज्ञ पुरुष से मिले पायस का अंश हनुमान जी के अवतार धारणा के लिए माता अंजनी के हाथों में गिरा था। इसी से ध्यान में आता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसे हनुमान जी के जन्म के समय का दिव्य वातावरण कैसा होगा, उस क्षण की हम सभी अत्यंत भक्तिपूर्ण अंतकरण से अनुभूति लेंगे। वह चैत्र शुद्ध पूर्णिमा की भोर थी अर्थात प्रातःकाल था। तेजो नारायण के आगमन की आहट लगने से कोयल अपने मधुर स्वर में भगवान के नाम का कुहूगान कर रही थी। उसके उन मधुर स्वरों ने संपूर्ण जीव सृष्टि धीरे धीरे अपनी पलके खोल रही थी। पक्षी चहचहाते हुए तेजो नारायण सूर्यदेव के आगमन के उपलक्ष्य में भगवान का गुणगान कर रहे थे। ऋषि मुनि एवं पुण्यात्माएं साधनारत थी। सर्वत्र प्रसन्न और सात्विक वातावरण था। अब सूर्य नारायण भगवान का लाल बिंब गगन में धीरे धीरे उभरने लगा था और इसी परम पावन मंगलकारी बेला पर माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। धन्य है अंजनी माता। हम सभी अंजनी माता के उस दिव्य पुत्र को अर्थात अंजनेय को मनोभाव से नमन करेंगे। जिस समय भगवान अवतरित होकर वसुंधरा पर अवतार धारण करते हैं तब सृष्टि रूप में विद्यमान उस परम शक्ति का अस्तित्व आनंदमय हो जाता है। हर्षित और स्पंदित होकर खिल उठता है। ये संवेदनाएं जैसे जीव सृष्टि को है उसी प्रकार जड़ सृष्टि को भी होती है। केवल पशु पक्षियों को और वृक्ष लताओं में ही नहीं अपितु पत्थर में भी प्राण होते हैं, पत्थर में भी चेतना होती है। अंतर बस इतना ही है कि पत्थर में विद्यमान चेतना सुप्तावस्था में और निद्रित होती है। साक्षात भगवान वे परमात्मा ही संपूर्ण जड़ता और जीव सृष्टि की चेतना होने के कारण उसी का अवतरण होते समय समस्त सृष्टि हर्ष से पुलकित हो उठती है। इसी कारण ही कदाचित हनुमान जी के आगमन की भगवान के हनुमान के रूप में अवतार धारण की आहट समस्त सृष्टि को ही लगती थी। समस्त जीव सृष्टि उस वक्त खिल उठी थी और प्रफुल्लित हो उठी थी। समग्र जीव सृष्टि के कण कण में भरा हुआ उस उच्च और अनाकलनीय अंतिम शक्ति का अस्तित्व हर्ष से प्रभारित हुआ था, इसलिए कि हनुमान जी तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार है। उसके कारण उनके अवतार धारण का आनंद संपूर्ण सृष्टि अनुभव कर रही थी। जड़ चेतन एवं जीव सृष्टि का समस्त अस्तित्व हर्ष विभोर होकर हनुमान जी के शुभागमन की प्रतीक्षा ही कर रहा था और उनके स्वागत के लिए तैयार था। इस प्रकार केसरी नंदन का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने एक अत्यंत सुंदर लीला रची। कुछ समय पूर्व ही जन्म लिए नवजात शिशु रूप में उस महावीर मारुति ने नभ में उदित हो रहे सूर्य को लाल गोले के रूप में देखकर वह कोई पका हुआ फल है ये समझ उसे खाने के लिए पवन पुत्र मारुति आकाश में सूर्य की दिशा में लपके। उस दिन पर्वतिथि होने के कारण सूर्य को निगलने के लिए राहु आया था। सूर्य की ओर पवन की गति से झपट रहे अंजनी नंदन को देखकर देवराज इंद्र को लगा मानो ये कोई दूसरा राहु ही है, और इसलिए इंद्र ने उस पर वज्र फेंका। उन्होंने मारुति पर महाविशालकाय पर्वतों को भी चकनाचूर करने वाले उस शक्तिशाली वज्र का प्रहार किया। वास्तव में सर्वशक्तिमान केसरी नंदन मारुति को उस वज्र को तो चकनाचूर करना अत्यंत ही सहज संभव था, परंतु केवल देवराज इंद्र के वज्र का सम्मान रखने के लिए मारुति ने उस वज्र के प्रहार को अपने ठोड़ी पर झेल लिया और उस वज्र से उनकी ठोड़ी कट गई, और तब से मारुति का नाम हनुमान पड़ गया। उस प्रचंड शक्तिशाली वज्र के प्रहार से हनुमान अचेत होकर धरती पर गिर गया। मारुति चूंकि पवन पुत्र है इसलिए पवन देव ने अपने पुत्र अर्थात हनुमान की जब यह स्थिति देखी तब वे बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित वायु देव ने संपूर्ण जीव सृष्टि में वायु संचरण बंद कर दिया। वायु अथवा हवा को प्रवाहित करना रोक दिया। उस समय कैसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण चराचर सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक का जीवन वायु के बिना अर्थात सांस के बिना घुटने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई मानो अब सृष्टि के प्राणी मात्रों का विनाश अटल है। तब जगत के कल्याण के लिए सभी देवी देवताएं वायुदेव के सामने प्रकट हुए और वायुदेव से आर्तता से प्रार्थना करने लगे। हे वायुदेव, आपके कोप के कारण संपूर्ण जीव सृष्टि संकट में आ गई है। अब इस संपूर्ण जीवन सृष्टि की रक्षा केवल और केवल आप ही के हाथों में है। बस आप ही इस जीव सृष्टि की रक्षा कीजिए। समस्त देवी देवताओं ने हनुमान जी को विविध प्रकार के अलौकिक वर दिए। उन्होंने हनुमान को अमरत्व का वरदान और आशीर्वाद देकर उन्हें गौरवान्वित किया। स्वयं तेजो नारायण ने उन्हें सभी विद्याएं प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी को चेतना प्रदान की। हनुमान की चेतना लौटने पर पवन देव शांत हुए और उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने तीनों लोकों में वायु प्रवाहित की, उससे संपूर्ण जीव सृष्टि को जीवनदान मिला और वो हर्षित हो गई। हनुमान जी वज्रांग अर्थात वज्र समान कठोर काया, महातेजस्वी, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत बलशाली, महापराक्रमी और इच्छा मृत्यु थे। ये सभी विशेषताएं जन्म से ही एकमात्र हनुमान जी में ही थी। वज्र समान कठोर काया, महातेजस्वी, अत्यंत बुद्धिमान, बलशाली, महापराक्रमी और इच्छा मृत्यु, ऐसे जन्म से ही विविध विशेषताओं का दर्शन कराने वाले श्री हनुमान की हम सभी महिमा गाएंगे। श्री राम प्रभु के दिव्य कार्य में योगदान देने हेतु हनुमान जी इस भूतल पर अवतरित हुए। हनुमान के रूप में साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव ही श्री राम रूपी विष्णु जी की भक्ति करने के लिए अवतरित हुए। श्री राम परम भक्त हनुमान जी की विश्व के सात चिरंजीवियां इनमें गणना की जाती है। जैसे नंदी के बिना शिवालय नहीं होता, वैसे ही श्री राम जी के देवालय को हनुमान जी की मूर्ति के बिना संपूर्णता नहीं आती। इससे यही प्रमाणित होता है कि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। रावण द्वारा हरण की गई सीता माता को छुड़ाने लंका में प्रवेश करने के लिए प्रभु श्री राम को भी सेतु का निर्माण करना पड़ा, जबकि हनुमान जी ने शतयोजन समुद्र में उड़ान भरी। हनुमान जी की उस उड़ान से भक्त और भक्ति की महिमा बढ़ गई। जिस प्रकार अपने पुत्र के पराक्रम से पिता को अद्भुत संतोष और आनंद होता है, शिष्य से पराजित होने में गुरु अपना गौरव मानते हैं, वैसे ही जब भक्त की महिमा बढ़ती है, वृद्धिंगत होती है, तब भगवान को अत्यंत आनंद होता है। जिनका चिंतन साक्षात भगवान करते हैं, ऐसे महापुरुषों में से एक हनुमान जी है। हनुमान जी केवल प्रभु श्री राम के परम भक्त ही नहीं है, अपितु वे तो भक्त शिरोमणि है। आज सहस्रों वर्षों के उपरांत भी जनमानस के हृदयों में श्री राम समान आदर का स्थान हनुमान जी को भी प्राप्त है। वनवास की अवधि में रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब उनकी खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम का हनुमान जी से प्रथम परिचय हुआ। जन्म जन्म से श्री राम के परम भक्त होने वाले चतुर हनुमान जी ने उसी क्षण अपने इष्ट देवता श्री राम प्रभु को पहचाना और उसी क्षण प्रभु चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। माता सीता की खोज करने के लिए शतयोजन समुद्र पार करना हो, अशोक वाटिका में सीता माता की खोज कर उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाना हो, रावण के सामने श्री राम के दूत बनकर प्रभु की स्तुति गानी हो, पूंछ में आग लगाई जाने पर उसी आग से सोने की लंका जलानी हो, अथवा राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर उनके लिए संजीवनी लानी हो, ऐसे सभी दिव्य कार्यों में हनुमान जी प्रभु सेवा में अग्रणी थे। श्री राम के प्रत्येक कार्य में राम भक्त हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान था। श्री राम ने जिस विश्वास के साथ हनुमान जी पर कोई कार्य सौंपा हो, उसी विश्वास से उन्होंने उसे पूर्ण भी किया है। इसीलिए श्री राम किसी भी विशेष कार्य के लिए हनुमान जी को ही चुनते थे। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है, परंतु उन 7 कांडों में से एक कांड में हनुमान जी की दिव्य लीलाओं का गुणगान किया गया है और उसी को सुंदरकांड कहा गया है। सुंदरकांड हनुमान जी की भव्य दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। भगवत भक्त की ये लीलाएं प्रभु और ऋषि मुनियों को भी सुंदर लगती है। इसीलिए जिस कांड में हनुमान जी की लीलाएं हैं उसका नाम सुंदर कांड रखा गया है। धन्य है ये प्रभु लीलाएं। वास्तव में धन्य है प्रभु की भक्त वत्सलता। सत्संग के अगले सत्र में प्रवेश करने से पूर्व हम हनुमान जी का स्मरण कर उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। हम सभी हनुमान जी के चरणों में भक्तिपूर्ण प्रार्थना करते हैं। मनोवेग से भी जिनका वेग अधिक है, पवन गति से भी जिनकी गति अधिक है, जिनके वेग और गति की तुलना केवल वायु देवता के साथ ही की जा सकती है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण जो जितेंद्रिय है, बुद्धिजीवियों में भी जो परम स्थान पर है, जो पवन पुत्र केसरी नंदन और वानर समूह के प्रमुख नायक है, ऐसे श्री राम के दूत को हम शरणागत भाव से वंदन करेंगे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम चरणम प्रपद्ये। आज के इस भक्ति सत्संग से हमें श्री हनुमान की दिव्य परम भक्ति सीखने मिलने वाली है। अंतर में शरणागत भाव जागृत कर आज हम सभी हनुमान जी की परम भक्ति सीखेंगे, उसे स्वयं में उतारेंगे और आत्मसात करेंगे। प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तब उन्होंने वानर सेना की सहायता से रावण का वध किया। भगवान का अवतार कार्य भले ही समाप्त न हुआ हो, पर श्री राम अवतार का एक बड़ा कार्य भाग पूर्ण हुआ था। त्रिलोक और देवताओं को भी भयभीत करने वाला रावण रूपी महादानव नष्ट हुआ था। जानकी सहित प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, हनुमान जी और विभीषण जैसे कुछ भक्तों के साथ अयोध्या नगरी लौटे। मार्ग में ऋष्यमुख पर्वत पर वे कुछ समय तक विश्राम के लिए रुके। हनुमान जी की पूज्य माता अंजनी उस पर्वत पर तपस्या कर रही थी। तब हनुमान जी के मन में अपनी माता को प्रभु श्री राम के दर्शन हो ये विचार आया। उन्होंने प्रभु रामचंद्र से प्रार्थना की। अपने भक्त की ये प्रार्थना प्रभु रामचंद्र ने तुरंत स्वीकार की। वे अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अंजनी माता से मिलने गए। उनके निकलते समय हनुमान जी ने उन्हें बड़ी विनम्रता से कहा, आप मेरी माता के सामने मेरी तनिक भी प्रशंसा न करें। अंजनी माता के सामने जाते ही श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। कुछ औपचारिक बातें होने के उपरांत प्रभु श्री राम ने युद्ध का और रावणवध का समग्र वर्णन संक्षेप में बताया। प्रभु श्री राम बोलने के आवेश में हनुमान जी द्वारा बताई गई बात एकदम भूल गए। उन्होंने अंजनी माता के सामने हनुमान जी के गुणों की अपार प्रशंसा की। वास्तव में अपने पुत्र की स्तुति सुनकर अंजनी माता को बहुत आनंदित होना चाहिए था, परंतु पुत्र हनुमान ने स्वयं रावण वध न कर प्रभु श्री राम को कष्ट दिया, इसका उन्हें बहुत खेद हुआ। माता अंजनी अपने पुत्र अर्थात हनुमान जी पर बहुत क्रोधित हो उठी। क्रोधातिशय में अंजनी माता ने अपने सिर के केश और चोटी से लंका को घेर लिया और उसे ऊपर उठाकर दिखाया। अंजनी माता का कितना सामर्थ्य होगा। माता अंजनी कहने लगी, इस हनुमान ने मेरे गर्भ से क्यों जन्म लिया, इसे तो गर्भ में ही नष्ट हो जाना चाहिए था। इसने तो मेरा दूध पिया है, मेरे दूध में कली काल को भी नष्ट करने का सामर्थ्य है, तो रावण जैसे शूद्र की बात ही क्या। मेरा ये पुत्र इतना शूर और पराक्रमी होते हुए भी उसने प्रभु श्री राम को रावण वध का कष्ट क्यों दिया, धिक्कार हो उसका। हनुमान ने यदि क्षण भर में रावण का वध कर सीता माता को छुड़ाया होता तो मैं अपने पुत्र पर गर्व करती। तब प्रभु रामचंद्र सहित सभी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अंजनी माता की स्तुति गाई। फिर सीता माता ने अंजनी को समझाया, श्री राम प्रभु की आज्ञा न होने के कारण ही हनुमान ने अकेले रावण का वध नहीं किया। अंजनी माता जैसी तेजस्वी वीर माता के गर्भ से श्री हनुमान जन्म लेंगे, इसमें आश्चर्य कैसा। श्री राम प्रभु ने अपने परम भक्त को जन्म देने वाली महासामर्थ्यशाली अंजनी माता के प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त की। और फिर वे सभी आगे अयोध्या की ओर बढ़ गए। अयोध्या पहुंचने पर भरत ने अयोध्या का राज्य श्री राम को सौंप दिया। बड़ी धूमधाम से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक समारोह संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम के मनुष्य देह धारण के उपरांत का तीव्र प्रारब्ध और साथ ही उनके अवतार कार्य के जीवन का एक बड़ा कालखंड अत्यंत कष्टप्रद 14 वर्ष का वनवास भोगकर समाप्त हो चुका था। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उसके उपरांत एक बार राजा श्रीराम अगस्त्य मुनि के साथ एकांत में संवाद कर रहे थे। उनके संवाद का विषय था पवन पुत्र हनुमान। हनुमान की महनीयता बताते हुए श्री राम कहने लगे, इंद्र के अकुंठित वज्र जैसा पराक्रम, अपने मुष्टि प्रहार से पर्वत को भी जो चकनाचूर कर दे, ऐसे बलशाली मेरु समान धैर्य, भक्त प्रह्लाद नारद जैसे भक्त भी लज्जित हो जाए, ऐसी परमोत्कट भक्ति, ऐसे सभी बातों ने वास्तव में हनुमान का आश्रय लिया है। लंका युद्ध में उनका असामान्य युद्ध कौशल्य, साक्षात यमराज इंद्र और कुबेर को भी लज्जित करने वाला ही नहीं, अपितु अपने पराक्रम में उसने साक्षात विष्णु जी के पराक्रम को भी मात दे दी। हे ऋषि, केवल एकमात्र हनुमान के कारण ही मैं सीता देवी को मुक्त कर सका और मेरे प्राणप्रिय लक्ष्मण एवं अन्य सभी पराक्रमी वानर वीरों को पुनः प्राण प्रदान कर सका। ऐसे मेरे प्रिय हनुमान के प्रति मैं चाहे जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करूं, वो तो अल्पी है। ऐसा कहते हुए प्रभु राम का कंठ अवरुद्ध हो गया, वे आगे बोल नहीं पाए। प्रभु की ये भक्त वत्सलता देखकर अगस्त्य मुनि का हृदय भी भर आया। इस प्रकार मेरे हनुमान ने मेरे लिए कितना किया है, इसका उल्लेख श्री राम की बातों में निरंतर आता था। मेरे प्रति हनुमान की भक्ति का इतना ऋण मुझ पर है कि यदि मैं अपने पंच प्राण भी उसे दे दूं, तब भी मैं उस ऋण को चुकता नहीं कर सकता। प्रभु सदैव ऐसा ही बोलते थे। वास्तव में भगवान को अपने भक्त के प्रति इतनी प्रीति और इतनी कृतज्ञता लगती है तो उस हनुमान जी ने अपने प्रभु राम की कितनी भक्ति, कितनी परमोच्च सेवा की है, इसकी हम थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। उस परम भक्त एवं भक्त शिरोमणि हनुमान जी से हम अत्यंत आर्तता से प्रार्थना करेंगे। हे हनुमान जी, आप ही हमें आपके समान प्रभु भक्ति करना सिखाइए। हे रामदास, हमें भी अपनी उत्कट भक्ति और प्रभु सेवा से भगवान को प्रसन्न करना संभव हो, यही आपके परम पवित्र श्री चरणों में भक्तिपूर्ण याचना है। हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप ही हमें आपके समान प्रभु भक्ति करना सिखाइए, यही आपके चरणों में हमारी भक्तिपूर्ण याचना है। राम भक्त हनुमान जी से ये याचना करने के उपरांत अब इसके आगे श्री राम और हनुमान जी हमें राम भक्ति का कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, इसकी हम प्रत्यक्ष अनुभूति लेंगे और उसके लिए एक और दिव्य प्रसंग का हम स्मरण करेंगे। राम राज्य की स्थापना के उपरांत कुछ अवधि के लिए प्रभु के जीवन में थोड़ी सी स्थिरता आई, तभी का ये प्रसंग है। एक बार राजमहल की एक पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम सीता माता के साथ कुछ विश्राम के क्षण बिता रहे थे। वाटिका में दिव्य सुगंधित पुष्पों की भीनी भीनी और मन को आह्लादित करने वाली सुगंध सर्वत्र फैली थी। ऐसा लग रहा था मानो वाटिका का प्रत्येक पुष्प प्रभु द्वारा प्रदान की गई सुगंध का प्रक्षेपण करते हुए प्रभु की सेवा कर रहा हो। श्री राम रूपी भगवान के समीप उनकी मूर्तिमंत भक्ति सीता माता के रूप में विराजमान थी। उनके श्री चरणों में दास्य भाव के प्रतीक दास्य भाव का साक्षात रूप हनुमान जी भी बैठे थे। तीनों का वार्तालाप चल रहा था, मानो भगवान, भक्ति और दास्य का सत्संवाद चल रहा था। उस सत्संवाद से चित्त को निर्मल बनाने वाली परम दिव्य शीतल सुगंध प्रक्षेपित हो रही थी। अभी भी सत्संग में हम ये दिव्य सुगंध अनुभव करेंगे। दास्य भक्ति की इस आह्लाददायी सुगंध को हम भी अपने अंतकरण में समाहित कर उसे संग्रहित करेंगे और दास्य भक्ति एवं प्रभु प्रेम के इस झरने का मन ही मन अनुभव करने का प्रयास करेंगे। बातों ही बातों में वनवास के काल के कुछ प्रसंगों की स्मृतियों का उल्लेख आया। एकाएक प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से प्रश्न किया। प्रभु का प्रश्न क्या था? हम सभी भक्तिपूर्वक ये संवाद ग्रहण करेंगे। प्रभु श्री राम हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, क्या तुम्हें इसका स्मरण है कि लंबे समय के उपरांत तुम्हारी और मेरी ऋष्यमुख पर्वत पर भेंट हुई थी? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन के वे अविस्मरणीय और अमूल्य क्षण हैं। मैं उस अमूल्य भेंट को कैसे भूल सकता हूँ भगवान? वे तो मेरे जीवन के अविस्मरणीय और अमूल्य क्षण हैं। लंबी अवधि के उपरांत तब मुझे मेरे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए थे। अब भी मेरे अंतकरण में वे अलौकिक सुगंधित स्मृतियां ताजी है। मैंने उसी क्षण ये जान लिया था कि आप ही साक्षात परब्रह्म है, मेरे प्रभु श्री राम है। मैं आपके देवत्व से भली भांति परिचित हूं। इस पर श्री राम बोले, हाँ, मैं भी ये समझ गया था कि तुमने मेरा मूल स्वरूप पहचान लिया है। हनुमान, क्या तुम्हें इस बात का स्मरण है कि उस समय तुमने मेरी और सुग्रीव की भेंट कराई थी? सुग्रीव से मिलाने के लिए तुमने मुझे अपने कंधों पर बिठाया और ले गए थे, परंतु मैं तुम्हारे इस आचरण से आश्चर्यचकित हो गया। मैं तो एक सर्वसामान्य जीव हूं ऐसा मानकर तुमने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया, जबकि तुम समझ गए थे कि इस राम के रूप में मैं वास्तव में कौन हूं। फिर भी तुमने मुझे अपने कंधों पर क्यों बिठाया? तुम्हारे इस आचरण से मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मेरे देवत्व के सामने सच में तुम्हारा यह आचरण मुझे तो चकित कर गया। इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, जी प्रभु, मैंने वैसे किया, ये सत्य है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, परंतु इस जीव ने ये साहस आपके द्वारा उच्चारित वाक्य का श्रवण करने के कारण ही किया था। तब प्रभु ने पूछा, कौन सा वाक्य हनुमान? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, स्वयं की पहचान देते हुए आपने कहा था कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं। ये सुनते ही मैं भली भांति समझ गया था, निसंदेह आप तो परब्रह्म ही हो। परंतु उस समय और एक विचार मेरे मन में आया, राजा दशरथ एवं माता कौसल्या ने भगवान को अपनी गोद में लिया होगा, कंधों पर बिठाया होगा, हाथ का पालना कर झुलाया होगा। फिर हम भक्त भगवान को अपने कंधे पर क्यों न बिठाए? इसलिए मैंने आपको अपने कंधे पर बिठाया। पुनः श्री राम प्रभु जी ने पूछा, परंतु हनुमान दशरथ की भांति कटी अर्थात कमर पर लेने की अपेक्षा कंधों पर क्यों उठाया? तब विनम्रता से हनुमान जी कहते हैं, मैं असमर्थ बलहीन प्रभु नाता न निभा पाऊंगा, पक्की पकड़ नहीं मेरी तुम्हें गोद न बिठा पाऊंगा, कांधे बिठा तुम्हें रघुवर लोभ अपना एक साध लिया। प्रभु श्री राम और सीता मैया हनुमान के अविरल भक्ति से ओतप्रोत वचन अत्यंत हर्ष और कौतूहल से सुनते रहे। आगे हनुमान जी बोले, हे प्रभु, जब हम किसी को अपनी गोद में लेते हैं तब हमें ही उसका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने हाथों की पकड़ मजबूत रखनी होती है, उसके लिए सतर्कता और एकाग्रता दोनों की आवश्यकता होती है। परंतु इसके ठीक विपरीत, जब हम किसी को अपने कंधों पर बिठाते हैं तब कंधों पर बैठने वाला स्वयं को संभालता है, वह अपनी पकड़ मजबूत रखता है और स्वयं को नीचे गिरने नहीं देता। हे भगवान, मुझे भली भांति ज्ञात है कि प्रभु की पकड़ तो कदापि ढीली नहीं पड़ सकती। हमारा प्रभु के भक्तों का बल क्षीण हो सकता है, परंतु भगवान का कभी नहीं। हे सर्व सामर्थ्यवान प्रभु, आपके सामर्थ्य के आगे मैं क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं। इसलिए मैंने आपको कंधों पर बिठाया, जिससे आपकी मुझ पर मजबूत पकड़ रहे। इस माध्यम से मैंने आपके प्रति प्रभु के भक्ति प्रेम का एक मोह, अपनी एक इच्छा पूर्ण कर ली। आपके प्रति भक्ति भाव के कारण ही ये विचार मेरे मन में आया। प्रभु, ऐसा विचार आना भी आपकी भक्ति का ही चमत्कार है। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने कंधों पर बिठाकर उन अविस्मरणीय क्षणों को भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने अपने हृदय मंदिर में सदा के लिए संजो लिया। उन क्षणों का वे पुनः पुनः स्मरण करते हुए भाव भक्ति के सागर में डूब जाते हैं, और फिर उसी भावमग्न अवस्था में वे बोले, हे प्रभु, कांधे बिठा तुम्हें रघुवर लोभ अपना एक साध लिया, अर्पित कर सर्वस्व चरणन में नाता तुम संग बांध लिया, अब थामो जीवन डोरी हाथ कभी तुम छोड़ो न, प्रेम बंधन बांधा तुम संग हे राम इसे तुम तोड़ो न, हे सर्व समर्थ कृपा निधि अपना जान स्वीकारो मुझे, हे राम कसकर अपने बंधन से बांधो मुझे, हे राम कसकर अपने बंधन से बांधो मुझे। साक्षात हनुमान जी द्वारा की गई इस अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण प्रार्थना से हम सभी सीख पाए भगवान को प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। हनुमान जी ने अपना प्रत्येक क्षण प्रभु सेवा के लिए ही समर्पित किया। केवल श्री राम इस शब्द के उच्चारण से ही हनुमान जी परम आनंद के सागर में गोते खाते हुए नाचने लगे। प्रभु श्री राम के दास हनुमान जी की उत्कट भक्ति का अब हम प्रत्यक्ष दर्शन लेंगे। हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम में अखंड रममाण हो गए हैं। रघुनाथ के गुणगान करते करते उस दिव्य गुण संकीर्तन से वे अमर हो गए। सभी अपनी आंखें बंद कर हनुमान जी की भक्ति भावमय मुद्रा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। केवल श्री राम इस शब्द के उच्चारण से ही हनुमान जी परम आनंद के सागर में गोते खाते हुए नाचने लगते थे। प्रभु श्री राम के दास हनुमान जी की उत्कट भक्ति का अब हम प्रत्यक्ष दर्शन लेंगे। हम भी हनुमान जी समान श्री राम भक्ति में संपूर्ण रूप से रममाण हो जाएंगे। हनुमान जी की एक और विशेषता ये है कि हनुमान जी अत्यंत प्रतिभा संपन्न थे। उनका त्याग भी असीम था। उन्होंने प्रभु राम का दास बनने के लिए अर्थात प्रभु श्री राम जी की दास्य भक्ति के लिए अद्भुत त्याग भी किया। अब हम भक्त शिरोमणि हनुमान जी के दास्य भक्ति की चरम सीमा अनुभव करेंगे। इसके लिए एक और प्रसंग का अवलोकन करेंगे। हनुमान जी ने संस्कृत भाषा में संपूर्ण रामायण लिखी थी। उससे उनकी उत्कट प्रभु भक्ति के साथ ही अद्भुत प्रतिभा के भी दर्शन होते हैं। हनुमान जी समान ही ऋषि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी। जब ऋषि वाल्मीकि को हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण के संबंध में ज्ञात हुआ तब उन्हें वो रामायण देखने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी ये इच्छा हनुमान जी के समक्ष प्रकट की। हनुमान जी ने तत्परता से वाल्मीकि जी की ये इच्छा पूर्ति की। वे उन्हें अरण्य अर्थात वन में ले गए। वहां एक शिलाखंड पर हनुमान जी ने अपने नख अर्थात नाखून से संपूर्ण रामायण लिखी थी। उससे हनुमान जी के भक्ति सागर में प्रभु प्रेम का सैलाब उबड़ रहा था। ऋषि वाल्मीकि ने उसे पढ़ा, वे आनंद से गदगद हो गए, उनकी आंखें छलक गई। भाव विभोर होकर रुंधे स्वर में वे बोले, हे हनुमान जी कितना बेजोड़ लिखा है। हनुमान जी रचित रामायण का गुणगान करते हुए एकाएक उनके मुख से शब्द निकले, इसके सामने मेरी रामायण नगण्य है, उसे कौन पढ़ेगा। ये सुनते ही हनुमान जी ने रामायण लिखा वो शिलाखंड वाल्मीकि ऋषि के समक्ष ही सागर में डुबो दिया। इसके पीछे हनुमान जी का विचार था, यदि मैंने ये रामायण प्रभु श्री राम जी के चरित्र उत्कृष्ट रीति से लिखा हो तब भी भविष्य में वह सबसे सुंदर सिद्ध हो सकता है। मैंने लिखा है इसलिए युगों युगों तक मेरा नाम इससे जुड़ जाएगा, जो उचित नहीं। मुझे केवल और केवल प्रभु श्री राम जी का दास बनकर रहना है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे प्रभु जी का गुणगान होते रहना यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कितना अपने प्रभु का विचार, कितनी प्रभु भक्ति, स्वयं की प्रतिभा संपन्नता का कैसा अद्भुत त्याग। कालांतर में राजा भोज को हनुमान जी द्वारा शीलखंड पर लिखे रामायण के संदर्भ में दृष्टांत हुआ। तब उन्होंने उसे सागर में ढूंढा तो उन्हें हनुमान जी द्वारा लिखे रामायण के कुछ भाग मिले। हनुमान नाटक ऐसे नाम से उनका ग्रंथ प्रसिद्ध है। दास्य भक्ति के लिए अद्भुत त्याग करने वाले हनुमान जी के श्री चरणों में हम सब अत्यंत आर्तता से प्रार्थना करेंगे। हे हनुमान जी, हम अज्ञानी जीवों से आपके समान तो नहीं पर उसके अंश मात्र तो ईश्वर के लिए त्याग करवा लें। आपके समान उत्कट भक्ति कैसे करें ये आप ही हमें सिखाए हनुमान जी। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। हनुमान जी दास्य भक्ति का उत्कृष्ट आदर्श है। उनकी दास्य भक्ति हिमालय के गौरी शंकर शिखर की अपेक्षा अधिक ऊंची है। श्री राम जी की दास्य भक्ति जिन्हें प्राप्त हुई ऐसे परम भाग्यशाली केवल हनुमान ही है। साक्षात ईश्वर के दास हनुमान जी को किसी प्रकार के वैभव की इच्छा नहीं थी, उन्हें मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा नहीं थी। प्रभु श्री राम के दास रामदास ये उनका परम श्रेष्ठ वैभव था। श्री राम का दास्य यही उनका सुख था, यही उनका परम भोग और यही उनकी परम शांति। श्री राम का दास्य यही उनकी परम मुक्ति है, अर्थात श्री राम का दास्य यही उनके लिए कैवल्य अर्थात मोक्ष है। प्रभु श्री राम पर हनुमान जी की अपरंपार और दृढ़ निष्ठा थी। उनका सामर्थ्य, उनका प्रभाव, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा का परिणाम है। ये सब प्रभु राम की ही कृपा है, ऐसे हनुमान जी की दृढ़ श्रद्धा थी। और इसीलिए वे स्वयं को श्री राम प्रभु का शरणागत सेवक समझते थे। आज भी भले ही वे अदृश्य स्वरूप में क्यों न हो, प्रभु श्री राम के दास ही है। हनुमान जी का जीवन स्वयं के लिए नहीं था, प्रभु की राम की सेवा यही उनका जीवन था। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, केवल प्रभु श्री राम की सेवा, केवल प्रभु राम की दास्य भक्ति। उसी के लिए हनुमान जी का अंतकरण व्याकुल रहता था। इस संदर्भ में साक्षात श्री राम प्रभु ने स्वयं ही बताया, सुग्रीव और विभीषण की दृष्टि सिंहासन पर थी। उन्हें मेरी सहायता चाहिए थी, इसलिए सुग्रीव और विभीषण उन्होंने मुझे सहयोग किया। परंतु हनुमान के साथ वैसा नहीं था, केवल प्रभु श्री राम का दास यही हनुमान जी की पहचान थी। अलौकिक एवं अद्भुत शक्ति से संपन्न सद्गुणों के आश्रय स्थान साक्षात नम्रता के प्रतीक हनुमान जी राजाओं के भी राजा हो सकते थे। बहुत ही सहजता से वे सम्राट हो सकते थे, तब भी हनुमान जी ने वैभवशाली सम्राट बनना नहीं स्वीकारा, उसका परित्याग किया और प्रभु श्री राम के दास बनकर ही रहे। उन्होंने श्री राम की दास्यता स्वीकारी। इस सब का कारण केवल एक ही था और वो थी उनकी प्रभु श्री राम पर असीम भक्ति। प्रभु श्री राम उनके प्राण थे। अपने इस असीम परम भक्त को साक्षात श्री विष्णु के अवतार श्री राम से अनायास ही मोक्ष मिल सकता था। साक्षात प्रभु श्री राम उन्हें मोक्ष देने के लिए सिद्ध होते हुए भी हनुमान ने युगों युगों के अंत तक श्री राम का दास बनकर रहना स्वीकार किया है। वास्तव में हनुमान जी की दास्य भक्ति कितनी परमोच्च है। हनुमान जी की दास्य भक्ति अवर्णनीय है, अनाकलनीय है। हम सभी अपने अंतर में हनुमान जी के समान दास्य भक्ति अनुभव करने और प्रभु के परम भक्त बनने का ध्येय रखेंगे। हम भी हनुमान जी समान प्रभु श्री राम के दास बनेंगे। सदैव उनके परम पावन श्री चरणों में हम लीन रहेंगे। दास्य भाव की मूर्ति हनुमान जी ने श्री राम प्रभु से जो आर्त प्रार्थना की, उस आर्त प्रार्थना से आज के इस दास्य भक्तिमय भक्ति सत्संग की भक्तिमय समाप्ति करेंगे। हनुमान जी प्रभु श्री राम से अत्यंत उत्कट दास्य भक्ति से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे रघुनाथ, हे रामचंद्र, हे प्रभु, मुझे जीवन में आपने सब कुछ दिया है। मेरे कुछ मांगने से पूर्व ही आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। हे प्रभु, इस नश्वर अशाश्वत और मायामय जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इसे मुक्त करो प्रभु। हे भगवान, वह मुक्ति मुझे केवल आपके परम दिव्य परम शाश्वत श्री चरणों में ही मिलेगी। इसलिए हे विश्वपति, हे तारणहार, हे रघुत्तम, हे रघुनायक, आपके परम दिव्य विश्वव्यापक श्री चरणों में मुझे स्थान दे। आपके श्री चरणों में मेरा कभी भी कम न होने वाला स्थाई निश्चल भाव रहने दे। आपके परम दिव्य श्री चरणों का मुझे सदैव स्मरण रहने दे। आपके श्री चरणों का मुझे कभी विस्मरण न होने दे। केवल यही एकमेव वरदान मुझे चाहिए। हे रघुनाथ, ये वरदान देकर मेरा उद्धार करें। हे रघुनाथ, आप मेरा उद्धार करें। हे श्री राम, मेरा ये मन, मेरा चित्त कभी भी आपके श्री चरणों से दूर न जाए। ये मन कितना भी चंचल हो तब भी आपके श्री चरणों से कभी दूर न करे। हे श्री राम, आपकी कथा, आपकी महिमा तो अजर अमर है। युगों युगों तक राम कथा का गुणगान होता रहेगा। तब हे पुरुषोत्तम राम, जब तक इस भूतल पर आपका गुणगान हो, राम कथा का श्रवण और चिंतन हो, आपकी पूजा अर्चा हो, तब तक हे राम मेरा भी जीवन रहने दे। तब तक मुझे मृत्यु न आए। आपके नाम के गुणगान में मुझे युगों युगों तक अखंड रम जाने दे। हे प्रभु, ये मुझे वरदान दे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों की पूजा मेरे हृदय मंदिर में अखंड होने दे। बस केवल यही एक वर दे। हे प्रभु, एक ही वर दे। हे रघुनाथ, मेरे मुख में सदैव आपकी स्तुति, आपका गुणगान, आपका नाम रहने दे। आपकी पवित्र कथा का प्रसारण मैं सर्वत्र कर पाऊँ। आपकी परम पवित्र श्री राम कथा के श्रवण में मैं सतत रममान रहूं। प्रभु श्री राम कथा के बिना अन्य किसी भी विषय का श्रवण मुझसे न होने दे। हे राम, हे रघुत्तम, हे पुरुषोत्तम परमात्मा, केवल आपका और आपका ही नाम, आपकी ही महिमा का गुणगान, आपके ही चरित्र का श्रवण, यही सेवा प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण होने दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपके ही श्री चरणों का ध्यान लगने दे। केवल यही एक वर मुझे दे प्रभु, मेरा मन आपके ही श्री चरणों में रममान रहे, यही एक वर दे। हे रघुनायक, आपके पवित्र और समस्त जीवों का मुक्तिधाम परम दिव्य श्री चरणों की गाथा, इन श्री चरणों की पवित्रता का वर्णन मुझे समस्त देवी देवताओं को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराओं को बताने दे। हे प्रभु, हे श्री राम, आपके पवित्र चरित्र वीर गाथा का वर्णन सुनते हुए आपकी स्तुति का श्रवण करते करते इस अज्ञानी जीव को अमरत्व प्राप्त होने दे। हे प्रभु, केवल और केवल आपका गुणगान, आपकी स्तुति सुनने के लिए सब मोह माया के समस्त बंधनों से मुक्त करके हे भगवान, आप मुझे अमर करें। हे प्रभु, यही एक वर मुझे प्रदान करें, यही एक वर मुझे प्रदान करें। हे प्रभु, मेघ जैसे अखंड जलधारा का वर्षाव करता है, उसी समान हे श्री राम, आपकी कृपा अखंड मुझ पर बरसती रहे, उसका मैं अखंड भक्तिभाव से प्राशन कर पाऊँ। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें। हे श्री राम, मैं कहीं भी रहूं, तब भी आपकी परम पवित्र गाथा का, आपके दिव्य संकीर्तन का मेघ के समान शतधार से वर्षाव करता रहूं। मैं अखंड भक्ति भाव से मेघ की वर्षा का प्राशन कर पाऊं, इसके लिए आप ही मुझे आशीर्वाद दे प्रभु। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दे। हे रघुवीर, आपकी महिमा का अखंड गुणगान करना, यही आपके सूक्ष्म रूप के दर्शन है, यही श्री राम के अमूर्त परम दिव्य दर्शन है। हे रघुकुल दीपक, हे प्रभु, आपके दर्शन की इच्छा हो तब आपके इस दास को आपके दर्शन होने दे। यही एक वर मुझे प्रदान करे प्रभु, यही एकमेव वर मुझे आप प्रदान करें। हे प्रभु, जब तक ये विश्व है, ये ब्रह्मांड है, वाणी है, स्वर है, नाद है, तब तक हे ब्रह्मांड नायक, हे विश्वाधिपति, हे जगत उद्धारक प्रभु, श्री राम की लीला नित्य नूतन ही रहेगी। उसे कभी मन नहीं भर सकता, वह कभी पुरानी नहीं होगी, वह भूतल में कण कण में गूंजती रहेगी। सप्त स्वर में गाए जाने वाले उस दिव्य राम कथा का, उसके भक्ति रस का मुझे अखंड प्राशन करने दे। हे प्रभु, आपका परम दिव्य भक्ति रस और उसका भक्तिमय अमृतमय स्वाद मैं अखंड चख पाऊँ। हे राम, यही एक वर मुझे प्रदान करे। हे प्रभु, यही एक ही वर मुझे प्रदान करे। हे राघव, आपके द्वारा निर्मित इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है, असंख्य भाषाओं में वह असंख्य मुखों से श्री राम के चरित्र की गौरव गाथा सुनाए। रामचरित्र की सभी दिशाओं में कीर्ति करें, श्री राम का अखंड गुण संकीर्तन करें। यही एक आशा, यही एक इच्छा मुझे सभी जीवों से है। हे राघव, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। हे प्रभु, केवल और केवल यही एकमेव वर मुझे प्रदान करे, यही एक वर मुझे प्रदान करे। हे रघुत्तम, मुझे आपकी परम दिव्य कथा का लाभ हो, इस उद्देश्य से मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म सूक्ष्मतम देह धारण कर धरती पर स्थान स्थान पर वैसे ही आकाश में सर्वत्र भ्रमण करता रहूँगा, परंतु मुझे आपकी दिव्य राम कथा का लाभ होने दे। हे प्रभु, राम कथा से मुझे एकरूप करे। हे प्रभु, राम कथा से मेरे अस्तित्व का विस्मरण होने दे। राम कथा के प्रत्येक शब्द में मुझे आपके दर्शन होने दे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में एक ही अर्थ याचना है, आपके दिव्य श्री चरणों में मेरा निश्चल भाव रहने दे। हे प्रभु, केवल इतना ही वर मुझे दे। हे प्रभु, हे रघुत्तम, हे राघव, आप मुझे एक ही वर प्रदान करें, आपके चरणों में निश्चल भाव से रहने दे। प्रभु, यही एक वर प्रदान करें, यही एक वर प्रदान करें, यही एक वर प्रदान करें। भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।